नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिकों को दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीय दूतावासों की डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का आधार बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा लिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध को मजबूत करना है। भाजपा के महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।